नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर आज हमारे साथ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नागपुर से एक कदम अंधश्रद्धा निर्मूलन की ओर इस कार्यक्रम के तहत हमारे साथ रूबरू होने जा रहे महाराष्ट्र संगठक हरिभाऊ पाठोले जी। यह अभियान अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरिजी देशमुख एवं तर्कशील संस्थान के सचिव पीकेश दुबे एवं वरिष्ठ पत्रकार इनके मार्गदर्शन में मोबाइल वाणी के माध्यम से छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर चला जाए। नमस्कार पाठोड़ी जी।
नमस्कार 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 जी।
पाठोड़ी जी नमस्कार।
हाँ नमस्कार।
आज छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है।
हाँ धन्यवाद दिनकर जी।
पाठोड़ी जी, क्या वाकई में देवी देवता शरीर में आते हैं? इसके पीछे की क्या सच्चाई है यह छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के श्रोताओं को बताइए।
मोबाइल वाणी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जो अभी आज बात चल रही है क्या देवी देवताओं का शरीर में संचार की सच्चाई, और दिनकर जी ने जो पूछा इसके बारे में सवाल कि क्या वाकई में देवी देवता किसी व्यक्तियों के शरीर में संचार करती है, मैं इतने सालों से हम इस संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं लेकिन ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। यानी इसका मतलब पूरी दुनिया में विज्ञान भी यही कहता है कि कोई भी व्यक्तियों में शरीर में ऐसा देवी देवताओं का संचार नहीं होता। फिर भी हमारे समाज में जो धारणाएं है वो धारणाएं या मान्यताएं जो है उसके कारण हमारे समाज में अभी भी कोई मनुष्य के शरीर में देवी देवता का संचार होता है ऐसा लगता है।
पाठोड़ जी, ये जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में आता है कि भाई लोगों के शरीर में देवी देवता आते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई मनोविज्ञान का कारण है?
हाँ जी हाँ, इसके पीछे मनोविज्ञान का कारण है। ये कैसा है, मैं जो अपनी समाज की धारणाओं की बात कर रहा था तो समाज के खासकर दो धारणा ऐसी होती है कि कोई भी मनुष्य ये भगवान का अवतार हो सकता है, ये पहली एक धारणा है। और दूसरी ऐसी धारणा है कि भक्तों के समस्याओं का हल करने के लिए व्यक्ति के शरीर में देवी देवताओं का संचार होता है। ऐसी तो मान्यता है अपने समाज में होने के कारण अगर वैसी परिस्थिति निर्माण अगर हुई तो ये तीन तरीके से इस शरीर में संचार होने जैसा लगता है। पहला है सूचना बाय सजेशन। ये सूचना कैसा कहेंगे हम, अगर ऐसा कोई वातावरण निर्मित हो गई, खासतौर पर आपको कहूंगा जैसे नवरात्रों के दिनों में जिधर उधर देवियों का माहौल रहता है और खासकर आठवां दिन जो अष्टमी कहते हैं मंदिरों में, ये जब महिलाएं खासतौर पर जाती है तो जब वातावरण ऐसा दिखता है तो खुद को ऐसी सूचनाएं देती है कि मुझमें भी देवी आएंगी और सचमुच वो उनका जो मस्तिष्क है ये सजेशन एक्सेप्ट करता है और वो ऐसे देवी जैसी कर लेती है और उसको लगता है कि अपने शरीर में देवी आएंगे। दूसरी बात ऐसी होती है ये जो ऐसी देवी आना होता है शुरू, इसके लाभ भी उसको मिलते हैं और लाभ मिलते मिलते आगे दूसरा जो बात है ऐसा पाखंड करना चालू हो जाता है। फिर नवरात्र रहे या न रहे वो देवी के शरीर में ये देवी देवता उनका संचार जैसा होता है वैसा ये अपनी ये महिलाएं या पुरुष भी वैसा बर्ताव करने लगते हैं। और एक तीसरी बात इसमें है कोई ऐसा कुछ मनोरुग्णता भी होती है, कोई ऐसे मानसिक जो बीमारी होती है, खास कर मैं हिस्टेरिया, मैनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें भी ऐसा शरीर में देवी का संचार हुआ ऐसा बर्ताव होने लगता है। ये मनोविज्ञान के कारण हमें समाज में किसी के शरीर में देवी का संचार हुआ है ऐसा लगता है, लेकिन ये सच बात नहीं है। इसके पीछे एक कुछ न कुछ कारण होते हैं।
प्राय देखने में ये भी आता है कि ज्यादातर देवी देवता है महिलाओं के ही शरीर में आते हैं, पुरुषों की संख्या बहुत कम होती है या नगण्य होती है, इसके पीछे का क्या कारण है साहब?
बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने दिनकर जी। हम समाज में जब देखते हैं तो महिलाओं के शरीर में देवी देवताओं का संचार, ये परसेंटेज अपन अगर परसेंट के हिसाब से बोलो तो 90% महिलाओं और 10% पुरुषों के इसमें, तो इसका कारण भी ऐसा है। अपने समाज में जो पुरुष प्रधान संस्कृति है या पितृसत्ताक संस्कृति है, इसमें महिलाओं का ज्यादा शोषण होता है, यानी महिलाओं से छल होता है या महिलाओं के बारे में संतानहीनता होती है या यौन शोषण की बातें होती है। ये सब ज्यादा से ज्यादा समस्या ये महिलाओं में होती है, और फिर ये समस्याओं का हल करने के लिए महिलाओं के पास कोई इलाज नहीं रहता पुरुषों के तुलना से। अगर पुरुष में भी कोई अगर ऐसी समस्याएं आई समझो या टेंशन आया, तो बिंदास पुरुष अपने ढंग से उसको ये करता है या उसका हल करता है। मैं थोड़ी इसमें आपको बता दूं कि जो अपने समाज में महिलाओं की स्थिति, ये बिना सीटी वाला कुकर जैसी होती है। आपको कुकर तो देखा होगा, अपन खाना पकाने के लिए काम में लाते हैं, अगर उसकी सीटी नहीं रखी उसको तो कैसा होगा, जिसमें भी अंदर जो कोई बाप होगी, यानी जैसे महिलाओं में जो समस्या होगी वो बाहर निकलने का कोई उसको मार्ग नहीं मिलता, इसलिए अंदर के अंदर वो कुड़ती रहती है। फिर ऐसा अगर कोई उसको मार्ग मिला कि देवी देवता का अगर संचार कर दिए कि आ गया समझो सूचना की वजह से, तो उसको अच्छा लगता है और पुरुष भी उसको उसकी दखल देते हैं, उसका पति दे रहे तो उसको पैर छूता है, साथ भी जो उसका शोषण करती है वो भी अच्छी बर्ताव करती है, समाज भी अच्छी ढंग से उसकी तरफ से देखता है। इसलिए ये जो अपना महिलाओं से जो अपने समाज में बर्ताव है, इसी कारण महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुष बहुत इनगुने चुने जो ढोंगी और पाखंडी होते हैं, ऐसे ही पुरुष अपने शरीर में देवी देवताओं का संचार करते हैं।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का विषय, इस विषय पर क्या विजन है?
हाँ जी, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 40 सालों से ये काम कर रही है, और ये 40 सालों से काम करते करते शुरू से ही अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति किसी भगवान को या किसी धर्म को विरोध नहीं करते हुए जो ढोंगी है पाखंडी है, देव धर्म के नाम पर जो जनता का शोषण करते हैं उसे हम विरोध करते हैं। और हमारा एक स्लोगन भी है कि शोषण से मुक्ति सबसे बड़ी देशभक्ति। अगर ये समाज शोषण मुक्त हो, खास करके महिलाओं पर जो अन्याय हो रहा है, महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, समाज में जो दुर्गम स्थान उनको मिल रहा है वो अगर बराबरी का मिले, उसकी समस्याओं का हल हो, तो ये अंधश्रद्धा कब हो सकती है? इसलिए हम इसी ढंग से ये समाज में काम करते हैं।
समिति किस तरह देवी देवताओं के शरीर में आने वाले मामलों की पोल खोलती?
हाँ जी हाँ, समिति ये जो जब किसी देवी देवताओं का संचार जब किसी व्यक्ति में होता है, तो इसका पोल पोल करने के लिए हम अगर हम वो गांव में जाते हैं, पहला तरीका है हमारा जन जागरण का तरीका। हम जन जागरण करते हैं, हम बताते हैं, और ये बताते हुए कहते हम ये बताते हैं उनको कि अपने संतों ने भी ऐसा कहा है, महापुरुषों ने कहा है, हमारे यहाँ संत गाड़गे बाबा कैसे काम करते थे, वो ये सब बताते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि किसी शरीर में देवी देवताओं का संचार नहीं होता, या अपने ढंग से जैसे बताते थे हम उसी ढंग से जाकर लोगों को समझाते थे। दूसरा काउंसलिंग करते हैं, अगर जो घर में ऐसी समस्याएं निर्माण हुई है उसका समुपदेशन करते हैं, अरे भैया ऐसा नहीं होता, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, वो समस्या हल करो, या अगर वो मनोरुग्णता हो तो डॉक्टर को दिखाए, ये भी हम बोलते हैं। अगर इतना भी नहीं माने तो आखिर हम उनको चुनौती देते हैं। हमारे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की अभी 25 लाख की चुनौती है। हम ये कहते हैं अगर आपके शरीर में देवी देवताओं का संचार हुआ तो देवी देवताओं को तो सब मालूम होता है दुनिया के, खाली हम हमारे जेब में एक नोट रख देते हैं और बोलते हैं ये नोट का नंबर बता दो, इस ढंग की चुनौती देते हैं। अगर आपने सही सही बताया तो हम 25 लाख रुपए दे देंगे इनाम, ऐसा भी हम बोलते हैं, ये भी ढंग है अपना। और इतना भी नहीं हुआ तो आखिर अभी हमारे महाराष्ट्र शासन ने 2013 में एक कानून बनाया है जिसका टोना टोटका विरोधी कानून कहते हैं, वो कानून का भी सहारा लेते हैं। वो कानून में ऐसा शरीर में देवी देवता लाकर अगर कोई पैसा कमाता हो तो कानून अपराध है, उसके लिए 7 साल की सजा और 5,000 रुपए दंड का प्रावधान है। ये सब हथकंडे हम ये खोल खोल के लिए अमल में लाते हैं। दिनकर जी,
आप एक बात और बताइए हमें कि अब तक आपके समिति के माध्यम से कितने प्रकरणों में पोल खोली गई, और एक आध ऐसा उदाहरण बताइए कि जिसका प्रभाव
हमारा अभी हम महाराष्ट्र में जो काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र के आजूबाजू में भी राज्यों में भी हम काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, यानी अभी तक 40 सालों में अगर उसकी गिनती की तो हजारों ऐसा देवी देवताओं जिन्हें शरीर में संचार किया था, इनकी फोन कॉल हमने की है, क्योंकि हमारे 35 जिले में हमारा संगठन है, करीब करीब हमारी इकाई है 150 से 200 तक, और हर इकाई में कोई ना कोई ऐसा देवी देवताओं का संचार मामला आता ही है, तो हम तय करते ऐसे अगर हमें ऐसी देवी ऐसी मिली इतने सालों में जिन्होंने हमारी चुनौती स्वीकार ली थी, वो है यवतमाल की देवी किशन, बेबी किशन राठौड़। ये बेबी किशन राठौड़ ये देवी क्या करती थी, इसके शरीर में देवी का जब संचार होता था तो ये चमत्कार करती थी, चमत्कारों का दावा करती थी, मुंह से ताबीज निकालना या कोई ऐसी वस्तु देना, ये अपने भक्तों को देती थी। जब हमने इनको चुनौती दी तो वो बोले ठीक है, तब तो सिर्फ 2 लाख रुपए की हमारी चुनौती थी। आपको पता है हमारे कार्याध्यक्ष उमेश बाबू जी चौबे थे, अभी जो नहीं रहे और अभी अपने साथ में है हमारे राष्ट्रीय महासचिव हरीश भाई देशमुख जी, इन्होंने सब वो देवी का भंडा फोट के लिए पूरा कर लिया था और पूरे महाराष्ट्र में इसकी चर्चा हुई थी। आखिर उनने हमने उनकी जांच पड़ताल की, क्योंकि इतना बड़ा सब पर्दाफाश करने का मामला था, तब सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, बहुत लोगों ने और पत्रकार भी आए थे, और जांच में हमें जो जब मुंह से लॉकेट वॉकेट निकालती थी वो जांच में हमें वो दिखा तो हमने पहले ही वो लॉकेट निकाल के रख दिया, और बाद में जब हमको ऐसा लगा कि अभी देवी के पास छुपाने वाली कोई चीज नहीं है तो तब प्रोग्राम चालू कर दिया। तो फिर आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, सिर्फ उसके शरीर में देवी का संचार जैसी वो करती थी, लेकिन कोई चमत्कार उसने नहीं किया, आखिर उसने हार मानी और ऐसी इस ढंग से इनकी उन्फल की। ये एक बहुत चर्चित ऐसा मामला था, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आपको बताऊंगा मैं, तो ये दिन भी कम पड़ेगा। दिन करिए,
आज हमारे साथ अंधश्रद्धा निर्मूलन के इस अभियान में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय सचिव भाई हरिजी देशमुख जी भी उपस्थित है और वह नागपुर शहर के लिए मोबाइल वाणी के एक प्रतिनिधि भी नियुक्त किए गए हैं। तो मैं आज हरीश भाऊ देशमुख जी से भी जानना चाहूंगा। नमस्कार देशमुख जी।
नमस्कार नमस्कार।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोबाइल वाणी के माध्यम से जब आपने इस सप्ताह से इस अभियान की शुरुआत की है तो इस विषय पर जन जागरण की समिति के लिए भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है?
देखिए हमारे मित्र प्राध्यापक हरिभाऊ पातोरे महाराष्ट्र इकाई के जो संगठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से देवी देवताओं के शरीर में आने का संचार इस बारे में बताया। हालांकि देवी देवता के शरीर में आने के बाद जो चमत्कार करते हैं वो पाखंड होता है। सुना है कि हमारे नागपुर के नजदीक एक देवी देवता ने शरीर में मुंह से गोले निकालती थी, खून के गोले निकालती है, बीमारी निकालती है, चेड़ा निकालती है। जब उसका पर्दाफाश किया गया, ये पाया गया तो उनके गोले निकालती थी वह लाइफ बॉय साबुन का टुकड़ा था, यानी इस प्रकार से ठगी करती थी। और यही बताया कि जो अंधश्रद्धा निर्मूलन का हम काम करते हैं तो संत लोगों ने जिस प्रकार से हमारे समाज में जन जागरण किया है उसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। जैसे कि देवी देवता शरीर में आने के बारे में संत गाड़गे बाबा की कहानी हर समय जनता को बताई जाती थी। संत गाड़गे बाबा भी अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ थे। वो कहते थे कि अरे तुम्हारे गांव में देवी देवता शरीर में आ जाए क्या? लोग कहा कि हमारे गांव में शरीर में देवी देवता आती है। अरे कौन सी देवी देवता तुम्हारे शरीर में आती है? लोग वहां काफी लोग बैठे रहते थे। वो बोलते थे मरी माया अंग में आती है, माता माया अंग में आती है, कहीं भगवान के नाम रहते हैं। फिर गाड़गे बाबा उनको सवाल करते थे कि अरे तुम्हारे सर में क्या है? हमारे सर में चूहे है। तुम्हारे नाक में क्या है? हमारे नाक में गंदगी है जी। तुम्हारे कान में क्या है? कान में मैल है जी। तुम्हारे पेट में क्या है? पेट में गंदगी है। फिर गाड़गे बाबा कहते थे अरे तुम्हारे सर में गंदगी है, नाक में गंदगी है, पेट में गंदगी है, मतलब तुम्हारा शरीर सड़ा सुड़ा है कि नहीं, गंदा है कि नहीं? हाँ जी हमारे शरीर सड़ा सुड़ा है। फिर गाड़गे बाबा कहते कि भगवान तो पवित्र है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा पवित्र भगवान श्रेष्ठ भगवान तुम्हारे सड़े सुड़े आदमी के आदमी शरीर में कैसे आएगा भला? इस प्रकार से सवाल गाड़गे बाबा करते हैं। और ये कहते थे कि देवी देवता कभी भी किसी के शरीर में नहीं आते, उनको काम देते नहीं, घुस इसके शरीर में, घुस इसके शरीर में, इस प्रकार से प्रबोधन करके जनता को जगाते थे। इसी प्रकार से अंधश्रद्धा निर्मूलन अभियान में हमारे सभी कार्यकर्ता महाराष्ट्र में बाहर भी देवी देवता शरीर में आने का पाखंड लोग समझाते हैं, उनको बेदखल करते हैं, उनका भंडाफोड़ भी करते हैं जैसे बताया गया है। और देवी देवता शरीर में आने का प्रकार में चमत्कार प्रदर्शन करते हैं तो वह पाखंड है, नौटन के फरेब है, छुटापन है, बार बार समझने की काम करता है। देवी देवता कभी किसी के शरीर में नहीं आते, ये लोग होता है या मनोरुग्णता होती है, ये हम जनता तक पहुंचाते हैं। सवाल है कि इस मोबाइल वाणी के जरिए हम अंधविश्वास निर्मूलन जो करना है, यानी वैज्ञानिक सोच का प्रसार प्रचार करना है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन में काफी सबके कहते हैं भूत प्रेत मंत्र तंत्र जानू कोना अंधविश्वास की उत्पत्ति आदि काफी विषय आते हैं, शगुन अपशगुन ज्योतिष शास्त्र, इन सभी विषयों के हमारे जो एक्सपर्ट्स लोग हैं जो इसके व्याख्याता है जिन्होंने काम किया है उनको सभी को रूबरू करेंगे और अपने मोबाइल वाणी के जरिए जनता तक पहुंचने का प्रयास करें। अंधश्रद्धा छोड़कर देश को बलवान बनाने के आंदोलन में सभी को शरीक होने का हम आह्वान करेंगे। धन्यवाद।
पाठोर जी आप से एक अंतिम प्रश्न। ये अभी विगत दो वर्षों से मान के चलो कोरोना काल भयंकर चल रहा है और इस कोरोना काल में भी ये जो शरीर में देवी देवता लाकर जो गरीबों का शोषण कर रहे तो आप छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से इन लोगों को लिए क्या संदेश देना चाहोगे?
हाँ जी हाँ हाँ, कोरोना काल में अभी समाज में ऐसा भय जैसा वातावरण तैयार हो गया है क्योंकि सभी बोल रहे हैं कि कोरोना के ऊपर कोई इलाज नहीं है। एक तो मुंह ढक के रखो यानी मास्क जरूरी है, सामाजिक दूरी जरूरी है, या बार बार हाथ धोना भी जरूरी है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मैंने खास कर अभी मध्य प्रदेश से जो कुछ लोग कुछ भी बातें चलते हैं जो अवैज्ञानिक होती है, और वो अवैज्ञानिक बात के पीछे न दौड़ते हुए, या कोई ऐसे लोग होते हैं कि इसका अगर इसका इलाज ही नहीं है तो भगवान ही तारेगा, फिर भगवान के मंदिर में जाएंगे, पानी डालेंगे, ये करेंगे। लेकिन आपको सभी को पता है कि ये कोरोना के ऊपर ना भगवान के पास इलाज है या ना भगवान कुछ कर सकता है। और कोई जो बोल रहे हैं कि ऐसे भी बोल रहे हैं कि गाय का मूत्र लो या गोबर लगाओ, ये लगाओ, ये भी उसके ऊपर इलाज नहीं है। मैं मोबाइल वाणी के सभी श्रोताओं को मैं यही कहूंगा कि कोरोना से दूर रहने के लिए आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आत्मविश्वास बढ़ाओ, और जो कुछ संदेश विज्ञान का आता है या शासन हमें देती है वो उतना ही इलाज आप करो और घर में रहो। अगर जरूरत हो तो ही बाहर निकलो, मुंह में मास्क रखो, बार बार हाथ धो, सामाजिक दूरी रखो, और क्योंकि ये कोरोना तो बहुत साल नहीं रहने वाला है, इसकी अगर श्रृंखला अपने आप में एक बार तोड़ी तो ये कोरोना नहीं आ सकता। इसलिए आप जो वैज्ञानिक सोच अपनी बढ़ाओ, वैज्ञानिक सोच जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ये कोरोना दूर भागेगा, दूर भागेगा, यही एक अक्सर इलाज है।
बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, और भाई हरि जी देशमुख जो की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ नागपुर शहर के मोबाइल वाणी के प्रतिनिधि भी है, आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से रूबरू होकर एक कदम अंधश्रद्धा निर्मूलन की ओर इस अभियान की आज शुरुआत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर बात होकर
धन्यवाद।